परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से योएल नबी की पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। पापों से धोकर तूने मुझे मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा मेरे प्रभु, तेरी हरदम महिमा करूं। कर तेरे द्वार पे तेरा ही दीदार करूं, तू मुझको पुकार ले, तेरे लिए मैं हरदम रहूं, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन, तेरा घर है मेरा मन, मेरे मन में है तेरा वचन। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें, आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु महिमा करें। यादों में तेरे हर पल रहूं, तेरे वचन में निभाता रहूं, तेरे लिए ही मैं जीऊं मरूं, तेरे कदम पर हरदम चलूं। आओ हम मिलकर नाचें और गाएं, प्रभु की हम महिमा करें।
प्रिय मित्र, प्रभुष्य के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से योएल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर इसराइलियों से कहता है कि वह अपनी आत्मा उन पर उंडे लेगा और तब वह कहता है कि जो मन फिराएगा वही उसके पास आशीषों को पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके सामर्थ्य और जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि जब हम आपके वचनों में से सीखें तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी प्रार्थना है उन भाई बहनों के लिए जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, आपके वचनों को सुन रहे हैं, आप उन पर दया दृष्टि करें, उनके विश्वास को जगाएं, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें अभी इसी वक्त, ताकि वे स्वस्थ और भले चंगे होकर आपको महिमा देने पाएं। आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर यहूदा से कहता है, हे देश तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा, और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा भी वह देगा। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और तेल से उमड़ेंगे। परमेश्वर उनकी हर क्षति को भर देगा। वे यहोवा के नाम की स्तुति करेंगे और परमेश्वर उनके मध्य वास करेगा। उनकी आशा फिर कभी ना टूटेगी। मेरे मित्रों, यद्यपि योएल लिखने वाले भविष्यद्वक्ताओं में पहला है, आत्मा के उंडेले जाने की चर्चा करने वाला वही एकमात्र भविष्यद्वक्ता नहीं है। यशाया नबी की पुस्तक 32 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल फलदायक बारी ना बने और फलदायक बारी फिर वन ना गिनी जाए, वह आने वाला प्रभु राज के विषय तथा आत्मा के उंडेले जाने के विषय में यहां पर चर्चा कर रहा है। आत्मा का उंडेला जाना भी प्रभु राज की ही एक घटना है। किसी भी भविष्यद्वक्ता ने कलीसिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। सबका संदर्भ इसराइल राष्ट्र से ही है। जी हां, यहेजकेल नबी की पुस्तक 36 अध्याय उसके 27 पद में लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। और तब पद 28 में वह कहता है, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। अब वह एक जाति विशेष और राष्ट्र विशेष के बारे में कह रहा है, इसराइल देश के बारे में। जी हां, वह समय भी विशेष होगा जब परमेश्वर उन पर अपना आत्मा उंडेलेगा। यहेजकेल 37 उसके 14 पद में लिखा है कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है और किया भी है। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, यही नहीं, अध्याय 39 उसके 29 पद में भी वह कहता है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इसराइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। लिखने वाले भविष्यद्वक्ताओं में जकर्याह अंतिम भविष्यद्वक्ता है। वह कहता है 12 अध्याय उसके 10 पद में, मैं यरूशलेम के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर योएल कहता है 2:32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। मेरे प्रियो, अब एक प्रश्न यह है, पेंतिकोस्त के दिन पत्रस ने इस पद का संदर्भ दिया था तो उसका अभिप्राय क्या था? वह क्या यह कहना चाहता था कि योएल की भविष्यवाणी पूरी हो गई है? नहीं, उसने यह दावा नहीं किया था। पेंतिकोस्त के दिन शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतरा था और वे यहूदियों की प्रादेशिक भाषा में प्रचार करने लगे। उन पर्व के लिए, या हम इस प्रकार से कहें कि उस पर्व के लिए यहूदी रोमी साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में आते थे और तब यह कार्य हुआ। कुछ ने तो विश्वास किया परंतु कुछ उनकी निंदा करने लगे और कहने लगे कि उन्होंने शराब पी रखी है। अतः शमौन पत्रस कहने को खड़ा हुआ। प्रेरितों के काम 2:14-15 में लिखा है, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में हैं, ये नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। वे आज के समान सुबह ही शराब नहीं पी लेते थे। आगे पद 16 में पत्रस कहता है कि यह बात योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। उसने यह नहीं कहा कि यह योएल भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी की पूर्ति है। सब सुसमाचार लेखक और प्रेरित पौलुस जब किसी भविष्यवाणी की पूर्ति का दावा करते हैं तो उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं। अब यहां आवश्यक नहीं कि मैं सबका संदर्भ दूं, परंतु उदाहरण के लिए देखें मत्ती रचित सुसमाचार 2:17-18 को। लिखा है, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी की पूर्ति थी जो प्रभु यीशु के जन्म की घटनाओं से संबंधित थी। अब मत्ती में आगे देखिए पद 23 में लिखा है, और नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। अब अंताकिया में पौलुस के प्रचार को भी सुने। वह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के विषय कहता है, प्रेरितों के काम 13:32-33 में, हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। अतः आप देख सकते हैं कि बाइबल भविष्यवाणियों की पूर्ति के संबंध में अति स्पष्ट है। जी हाँ, प्रेरितों के काम 2:16 में पत्रस कहता है, यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। तो उसके कहने का अर्थ क्या था? उसके कहने का अर्थ था कि यह वही बात है, न कि उसके भविष्यवाणी की पूर्ति है। दूसरे शब्दों में यह वैसी ही बात है। पेंतिकोस्त के दिन पत्रस अन्य जातियों को नहीं यहूदियों को संबोधित कर रहा था क्योंकि वे पुराने नियम से परिचित थे। वे मूसा की व्यवस्था के निर्देशानुसार भी जीवन जी रहे थे, यात्रा करके वहां पर आए थे, पत्रस कहता है, ठट्ठा न करो, यह वैसा ही है जैसा योएल ने कहा कि प्रभु के दिन होगा। और तब 2:17 में वह योएल की भविष्यवाणी सुनाता है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। मेरे प्रियो, यह अंतिम दिनों की घटना है जब सब प्राणियों पर आत्मा उतरेगा। अतः यह योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं थी, क्योंकि आत्मा केवल शिष्यों पर ही उतरा था, जिसके परिणाम स्वरूप 3,000 मनुष्यों का उद्धार हुआ था। परंतु यह योएल की भविष्यवाणी की पूर्ति किसी भी रीति से नहीं थी। पत्रस के कहने का अर्थ था कि ठट्ठा मत करो, हंसी मत करो, और परमेश्वर के वचन को समझते हुए ध्यान दो कि आत्मा सब प्राणियों पर नहीं, केवल कुछ ही पर उतरा है। वह दिन तो अभी दूर भविष्य में है। तदुपरांत पत्रस उस भावी दिन के होने वाली घटना का उल्लेख भी करता है। योएल नबी की पुस्तक 2:30-31 कहता है, मैं आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। मेरे मित्रों, पिंतेकोस्त के दिन क्या ऐसा हुआ था? कदापि नहीं। उस दिन तो भूकंप आया और न ही सूर्य और न ही चंद्रमा पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ा। ऐसा तो परमेश्वर के उस बड़े और भयानक दिन में होगा। पिंतेकोस्त का दिन तो भयानक दिन नहीं था, वह तो एक शुभ दिन था। मेरे मित्रों, यदि हम योएल की पुस्तक को भली भांति समझ लें, तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि पत्रस योएल की भविष्यवाणी को पिंतेकोस्त की घटना में पूरी होते हुए कहता है। पत्रस उनके ठट्ठों का उचित उत्तर देने के लिए योएल के संदर्भ को दे रहा था। अब एक प्रश्न यह भी है, पत्रस के उपदेश का विषय क्या था? पिंतेकोस्त के दिन पत्रस के उपदेश का विषय था अपने मुख्य पाठ के लिए। वह भजन संहिता 16:8-10 पद को चुनता है, जिसमें प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का उल्लेख किया गया है। देखिए वह इस भजन को कैसे यीशु से प्रासंगिक बनाता है। प्रेरितों के काम 2:32-33 में, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। योएल और पत्रस दोनों ही का एक निष्कर्ष है, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। पत्रस कहता है कि उद्धार पाएगा। यह उस समय उस सब पदों में से एक है जो मुझे निष्कर्ष निकालने पर बाध्य करता है कि उद्धार का सबसे महान समय अभी भविष्य में है। मेरे प्रियो, मेरे विचार में परमेश्वर खोए हुओं से अधिक को उद्धार प्रदान करेगा। मैं स्पर्जन से सहमत हूं जो कहता है कि परमेश्वर के उद्धार प्राप्त खोए हुओं से अधिक होंगे। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा, तब प्रभु को ग्रहण करने वालों का संसार में सबसे बड़ा दिन होगा। महाक्लेश के समय भी परमेश्वर की ओर फिरने वाले बहुत से लोग होंगे, कलीसिया के युग से भी अधिक। जी हां, पुनरुत्थित प्रभु यीशु, जिसे परमेश्वर ने प्रभु और ख्रिस्त बनाया, वही पत्रस के उपदेश का विषय था। वह आत्मा के अवतरण पर बल नहीं दे रहा था। मुख्य बात तो यह थी कि वे प्रभु यीशु को जानते, और यही कारण था कि पत्रस उन्हें यीशु के बारे में बता रहा था। मेरे मित्रों ऐसे अनुभव में न खो जाएं जो आपको प्रभु यीशु के व्यक्तिगत ज्ञान से वंचित कर दे। वह आपके विचारों में, जीवन में और आपकी सेवा में क्या स्थान रखता है, यह महत्वपूर्ण है। योएल की भविष्यवाणी का यह भाग बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अभी इसे पूरा होना बाकी है। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 3 से जारी रखेंगे। अध्याय 3 का विषय है प्रभु के दिन की प्रतिज्ञा। योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। ध्यान दीजिए, लिखा है क्योंकि सुनो, जिन दिनों में। अब प्रश्न है कौन से दिनों में? पेंतिकोस्त के दिनों में? जी नहीं, क्योंकि वह कहता है जिस समय मैं यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। पेंतिकोस्त के दिन वे आराधना करने के लिए आए थे, सदा के लिए स्वदेश नहीं लौटे थे। प्रभु यीशु ने तो क्रम ही में पलट दिया था, जिसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 8 पद में, जहां पर कहा गया है यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक तुम सब मेरे गवाह होगे। जी हाँ, बंधुआई में गए यहूदियों को स्वदेश लौटाने के विपरीत प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से कहा था कि वे पृथ्वी की छोर तक यह संदेश सुनाएं कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठा है। उन्हें सुनाएं कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और धीरजवंत है, वह दयालु है और जो प्रभु यीशु को पुकारेंगे वे उद्धार पाएंगे। सुसमाचार ऐसा सरल है कि बुद्धिमानों में से अधिकांश उससे चूक जाते हैं। बहुत ही आसान है, विश्वास करो। जी हाँ, विश्वास करना ही है जो आपके लिए काफी है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं कर्मों से उधार में नहीं, उधार से कर्म में विश्वास करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आपका उद्धार हो गया है तो आप सुसमाचार फैलाना चाहेंगे, इस सत्य को लोगों को बताना चाहेंगे। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं आपके उद्धार पर संदेह करता हूं, आपके कर्मों पर नहीं, क्योंकि विश्वास से कर्म उत्पन्न होते हैं। आइए हम पढ़ेंगे योएल नबी के पुस्तक 3 अध्याय उसके 2 पद, लिखा है उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तीतर बीतर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। कहता है मैं सब जातियों को इकट्ठी करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा। जी हाँ, यह यरूशलेम में है जहां पर वह उन्हें ले जाएगा। तब कहता है और वहां उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तीतर बीतर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। पृथ्वी पर प्रभु यीशु के आगमन से पूर्व विश्वासी तो प्रभु यीशु के न्यायासन के समक्ष खड़े हो चुके होंगे कि अपना अपना प्रतिफल प्राप्त करें। यदि उनके पास प्रतिफल पाने के लिए कुछ है तो वे पाएं। पृथ्वी पर वह न्याय करके देखेगा कि उसके राज्य में कौन कौन प्रवेश करेंगे। यह अद्भुत भविष्यवाणी योएल ही में नहीं है। यद्यपि योएल पहला भविष्यवाणी का लिखने वाला है, भविष्यवक्ता था, अन्य सब भविष्यवक्ताओं का यही वचन है, अंतिम भविष्यवक्ता जकर्याह भी यही कहता है 2 अध्याय उसके 10 और 11 पद में, हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएंगी और मेरी प्रजा हो जाएंगी और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। मेरे मित्रों, यही बात योएल ने आरंभ में उनसे कह दी थी। यह उनकी महान और ज्योतिर्मय आशा भी थी कि प्रभु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आएगा और सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलेगा, या इस प्रकार से कहें कि सब प्राणियों पर वह आत्मा उंडेलेगा और आत्मा उंडेला जाएगा। मेरे मित्रों, यह निश्चित है कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर आत्मा उंडेलेगा और जवान भी भविष्यवाणी करेंगे। आज मुझे और आपको भी परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है ताकि हम भी उस महान उद्धार का आनंद पाकर परमेश्वर को धन्य कहने पाए। मेरे मित्रों, इस अध्ययन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पत्रस और योएल नबी की बातों को हम स्पष्ट कर रहे हैं, और विशेष करके योएल नबी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी हम देख रहे हैं कि अपनी आत्मा को वह उंडेलेगा, और पेंतिकोस्त के दिन में जो पवित्र आत्मा आया यह एक नहीं है परंतु यह अलग अलग है, अर्थात अभी भी योएल नबी की भविष्यवाणी का पूरा होना बाकी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करे कि आप पवित्र आत्मा के निकटता में उसके संगति में बढ़ते चले जाएं।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, खुश रहा मेरा गम उतना ही बढ़ा।